इसका इस एंजॉय का मजा लेना है। 2 सितंबर को ये कर रहे हैं और ये लोकेटेड हैं एग्जिट 268 आपने लेना है हाईवे 410 पे, तो आपको ये बहुत बड़ी फैसिलिटी जो है नजर आएगी। यू कैन नॉट मिस दिस। ये है 1010 इंडस्ट्रियल रोड के ऊपर, तो वहां पे आप जाएं अपना जो भी ट्रक का काम है वो कराएं और जो आपका करेंगे ऑयल चेंज उस पर $75 ऑफ देंगे, तो ये आपने करना है। ठीक है जी। उसके अलावा आपको हम बताते हैं हमारी वेबसाइट पे जाएं, पीआरई वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरियां मिलती हैं। लोकल खरबे हैं, लोकल खरबों के नीचे फिर आपको नजर आते हैं हमारे हेल्थ मेडिसिन लाइफस्टाइल एंटरटेनमेंट की स्टोरियां, फिर यूथ जोन में स्टोरियां, फिर कनेडा की और स्पोर्ट्स की स्टोरियां। ठीक है जी। तो ये आप इनमें पढ़ें इनको और एंजॉय का मजा लें। और राइट साइड पे जो है हमारे स्पॉन्सर हैं, तो इनको आप प्यार दिखाएं। ठीक है जनाब। चलो जी हूं आने हाजी अपनी खरबों की तरफ। अच्छा जनाब, आज जो है जनाब बड़ी इन्होंने फनी बात की, जो हमारे कनेडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं जो शॉन फ्रेजर साहब हैं, शॉन फ्रेजर साहब कहते हैं थोड़ा बस अब टाइम रह गया है जो हमारा बैकलॉग है उसको खत्म होने में, थोड़ा रह गया है, यानी बस 6-6 महीने अब लगा करेंगे।
कितना
पहले 3-3 साल लगते थे, अब 6-6 महीने लगेंगे। ठीक है। तो अब जो है ये बैकलॉग खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं जी, एक्सपर्ट्स कहते हैं एज ऑफ एंड ऑफ जुलाई 1.3 मिलियन एप्लीकेशंस जो थी वो प्रोसेस के अंदर थी। जब भी फोन करो तो कहते हैं इट इज अंडर प्रोसेसिंग। तो इसके ऊपर जो है बड़ा गुस्सा चढ़ गया है एनडीपी को। एनडीपी के जो इमिग्रेशन क्रिटिक हैं जेनी क्वान, उन्होंने जो है उन्होंने कहा जी कि ये जो बातें कर रहे हैं ना ये कोई कंफर्ट नहीं पेश कर रही, जो मिनिस्टर साहब की बातें हैं
सोल्यूशन नहीं,
ना ये सोल्यूशन नहीं है, लोगों को कंफर्ट नहीं ये दे रही बातें, क्योंकि जो लोग बहुत सारे महीनों से नहीं सालों से कोशिश कर रहे हैं अपने प्यारों को बुलाने के वो नहीं बुला सकते। तो उन्होंने एक लेटर लिखा है, ज्वाइंट लेटर, जगमीत सिंह को भी एनडीपी के जो लीडर हैं और ट्रूडो साहब को भी लिखा है, और उन्होंने कहा जी कि दिस देयर इज अटर केओस एट द मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन। और ये जो कह रहे हैं कि जी हम इसको खत्म करेंगे, और कभी कह रहे हैं जी ह्यूमैनिटेरियन मसला है, तो कभी कुछ और अनप्रेसिडेंटेड डिमांड है, और ये है, तो इसके ऊपर जरा आप थोड़ा सा गौर करें। वो कह रहे हैं जी, मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हमने तो जी खैर जो है वर्क परमिट्स जो हैं 349,000 की हैं, विच मीन्स कि मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा काम कर रही है। 199,000 जो थे वो किए गए थे 2021 में, तो इसका मतलब है काम ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा हम 1,250 न्यू एम्प्लॉयज जो हैं उनको हम हायर कर रहे हैं, और हमने 85 मिलियन रखा था सिर्फ वेट टाइम रिड्यूस करने का इमिग्रेशन के अंदर, और इसके अलावा जो 2022 का बजट था उसमें नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 187.3 मिलियन। तो लोगों ने इनको कहा जी पैसे ये मिलियन 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 रखने से प्रोसेस तेज नहीं होंगे, प्रोसेस तेज होएगा जब आप हायरिंग का प्रोसेस तेज करेंगे। तो हायरिंग का प्रोसेस जिस वक्त तक तेज नहीं होगा उस वक्त तक काम नहीं होगा, बल्कि कल शायद हो सकता है कि कुछ एमपी हजरात को मेरी बातें ना अच्छी लगी हों। कल हम जब हम जो अवार्ड्स का अनाउंसमेंट के लिए हमें बुलाया हुआ था हमारी टीम को, जब हम वहां पे गए तो वहां पे शफकत साहब से जो कि ब्रैम्पटन सेंटर से एमपी हैं लिबरल, और एक सलमा जाहिद जो हैं जो कि स्कारब्रो सेंटर से हैं एमपी लिबरल पार्टी की, तो मैंने उन दोनों को यही कहा, मैंने कहा कि आप लोग कोई काम बहुत बैकलॉग में जा रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं इसको कर रहे हैं। तो वो कहने लगे जी हम नहीं, अब तो हम बहुत हायरिंग के लिए हम बुला रहे हैं, लोग नहीं आ रहे। तो मैंने तो उनको डायरेक्टली कहा, मैंने कहा कि ये बदनीयती है ना सिर्फ गवर्नमेंट की बल्कि ये प्राइवेट अदारों की भी है, क्योंकि जैसे अमेरिका में उन्होंने किया है, उन्होंने लोगों को कहा भाई कि हम आपको ज्यादा पैसे ज्यादा बेनिफिट्स देने को तैयार हैं, आप आओ से ही काम करो। मैंने कहा लोग धड़ाधड़ वहां पे जा रहे हैं, सारी फिल हो गई हैं, और उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अमेरिका में कितना कम आ गया, तो आप लोग क्यों नहीं ऐसे कर रहे हैं, आप लोग क्यों चिपके हुए हैं $15 पर आवर के ऊपर चिपकी हुई है सब कंपनियां। और फिर कह रही हैं जी लेबर की शॉर्टेज है, भाई लेबर की अगर आपको इतनी शॉर्टेज है आप इतने मरे जा रहे हैं, $20 पर आवर लोगों को दो और उनको बोलो जी बेनिफिट्स भी देंगे इसके अलावा आप।
इट इज $20 आप जो कह रही है ना वो सिर्फ इसलिए नहीं कि $5 हमने बढ़ा दिए, तो आप कॉस्ट ऑफ लिविंग
बढ़ाएंगे, आप
कॉस्ट ऑफ लिविंग आप देखें, इन्फ्लेशन देखें, इसके साथ साथ CPI देखें आप, और फिर आप डिसाइड करें कि ये हमने $15 रखा है तो ये तो मिनिमम रखा है हमने, तो वी आर नॉट ट्राइंग टू हायर एवरीबॉडी द होल कैनेडा एज ए मिनिमम।
एग्जैक्टली।
अगर आपने इकोनॉमी भी सही करनी है तो यू हैव टू पे देम अ लिटिल हायर देन व्हाट द मिनिमम इज, सो पीपल कैन कम, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी आपकी, लोग खुश होंगे, और इसके
पैसा इकोनॉमी में आपके पास आएगा ना, लोगों आपके पास. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड द एमपीज यस्टरडे. मैंने उनसे कहा कि आपकी गवर्नमेंट भी और आपका प्राइवेट सेक्टर भी चिपक गया है बस $15 per hour पे, और उसमें से भी आप काट के लोगों को, मस्कीनों को $12 या $11 देते हैं, राइट? तो आप खुद सोचें कि $11 per hour पे या $12 per hour पे जो आदमी काम कर रहा है वो कितनी एफिशिएंसी आपको दिखाएगा, या वो कितनी खुशदिली से, या वो कितना तैयार होएगा इन द फर्स्ट प्लेस आपके पास आने के लिए. तो कोई जवाब नहीं था खैर उसका उनके पास. तो बस ये है. तो ये थोड़ा सा ना ये दिल बड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे लोगों को, अगर आपने काम लोगों से करवाने हैं और अगर आप चाहते हैं. और ये आपका अपना खुद का फायदा है. ये सारे का सारा पैसा, जितने पैसे लोगों के पास होंगे लोग उतनी वो स्पेंडिंग करेंगे.
मनी तो रोल होती है.
रोल इस वक्त ना वो कपड़े ले रहे हैं, ना जूते ज्यादा ले रहे हैं, ना कोई और कोई घर की चीजें ले रहे हैं. उनके पास पैसे ज्यादा होंगे तो वो सोचेंगे ना, अच्छा भाई ये अब रिप्लेस कर लेते हैं, ये रिप्लेस कर लेते हैं, ये तो इकोनॉमी में आएगा पैसा सारा, तो वापस रोल
होगा. अगर इन्फ्लेशन हाई है और वेजेस वैसे के वैसे ही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पैसा रोल नहीं होएगा.
नहीं होएगा, बिल्कुल नहीं होएगा. लोग जो है वो और ज्यादा कॉशियस हो जाएंगे. जितना उनके पास है वो घर में लेके बैठे रहेंगे, जाएंगे हाँ. नहीं, और वो उस पे जो है ईआई पे बैठे रहेंगे और बेनिफिट्स पे बैठे रहेंगे. दे विल नॉट वर्क. ठीक है. अच्छा जी, एक बड़ा कंसर्न आया है यहाँ पे ऑन्टेरियो में कि जो इंडिपेंडेंट वॉलंटियर साइंटिस्ट और जो हेल्थ वर्कर्स थे, उनको कहा गया है कि जो ऑन्टेरियो गवर्नमेंट की वजह से कि शायद आपका काम जो है अब डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा. ऑन्टेरियो साइंस एडवाइजरी टेबल जो है उसने कहा कि हमको, पब्लिक हेल्थ ऑन्टेरियो ने कहा है कि 6 सितंबर को हम आपको डिसॉल्व कर देंगे. अच्छा, फोर्ड साहब जो हैं वो नायग्रा फॉल्स में आज बात कर रहे थे रिपोर्टर्स से, तो उनसे पूछा गया कि भाई ये आप क्यों ऐसे डिसॉल्व कर रहे हैं. उन्होंने कहा जी नहीं डिसॉल्व नहीं हम कर रहे, पब्लिक हेल्थ ऑन्टेरियो में उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम. तो अब एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो फिर आप शट डाउन क्यों कर रहे हैं इनको. ये 35 मेंबर टेबल था, ये जो लोग थे जो कि इसके ऊपर वॉलंटियर साइंटिस्ट और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स काम कर रहे थे. तो उन्होंने कहा जी कि फिर आप इसको शट डाउन क्यों कर रहे हैं. दोबारा उन्होंने अपनी तरफ से जवाब दिया कि नहीं हम शट डाउन नहीं कर रहे हैं, हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं.
ये भी देख लेना कि इनके जो डिसीजंस या इनके जो ख्यालात और इनके जो वो थे कि भाई आप सजेशंस, That doesn't match with government suggestions.
बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल,
है ना
हाँ.
तो इसलिए मगर ये दीजा था एक्सपर्ट, दीजा था साइंटिस्ट.
और वो कहते हैं जी कि हमारे जिस वक्त तो आपका पेंडेमिक चल रहा था तब तो हर वक्त आपको हमारी एडवाइस चाहिए होती थी. तो आपको क्या लगता है कि यू आर आउट ऑफ द पेंडेमिक नाउ? नहीं, अभी भी चल रही है चीजें.
exactly.
तो आप इसको ना करें. और ये कितने लोग भी नहीं थे, 35 लोग ही थे टोटल. तो बहरहाल ये अब इनका बड़ा कंसर्न आया. और ये सारा कुछ जो है ये इसको देखता था यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का डाला लाना स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ जो थी इसको ओवरसी करती थी चीज को. तो उनका भी बड़ा जो है ये इसके ऊपर, यानी कि ऐसा नहीं है कोई लल्लू पंजू अदारा था जो देख रहा था, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो देख रही थी इसको ऐसे. अच्छा जी, आज एक नई रिपोर्ट फिर से आई है और वो कहती है कि जी जो होम प्राइसेस हैं वो गिर गई हैं और इसलिए लोगों के लिए जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि वो खरीद लें, लेकिन एट द सेम टाइम मॉर्गेज रेट्स जो हैं वो बेतहाशा ऊपर चले गए हैं. और टोरंटो रीजनल रियल एस्टेट बोर्ड जो है वो कहते हैं जी कि इस वक्त प्राइसेस जो है एवरेज होम की प्राइस जो है 900,000 से ऊपर थोड़ी सी चल रही हैं, थोड़ी सी ऊपर चल रही हैं. लास्ट मंथ जो थी 1 million से ऊपर चल रही थी, विच इज अ हाइक ऑफ 1% फ्रॉम जुलाई 2021, बट स्टिल अ ड्रॉप ऑफ 6% फ्रॉम जून 2022, यानी कि जो पिछले महीने दो महीना पहले गुजरे हैं. इसके अलावा क्रिया जो है उसका भी डाटा शो करता है कि 629,971 था जुलाई में प्राइसेस जो थे एवरेज होम की, विच इज डाउन 5%, क्योंकि लास्ट जुलाई में ये प्राइस जो थी 662,924 थी. तो उसकी वजह से ये लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ी सी स्लाइड कर रही हैं हाउसेस की जो है,
थोड़ी सी हल्का सा करेक्शन आ रहा है.
हाँ, हल्का सा करेक्शन है, कोई इतना डिजास्ट्रस नहीं है, हल्का सा. ऑन सीजनली एडजस्टेड बेसिस वो कह रहे हैं 650,760 था, जो कि 3% ड्रॉप है फ्रॉम जून. एंड इन जुलाई 2020 एवरेज जो नेशनल प्राइस थी वो 543,920, क्योंकि जो दूर के इलाके हैं उसमें जरा प्राइसेस कम है, तो फिर वो जीटीए से जैसे ही आप जाते हैं तो फिर वो तो नेशनल ये जो एवरेज उन्होंने निकाला था. और वो कह रहे हैं जी कि फिर भी जो प्राइसेस हैं उनके अंदर 10.8% जो है उससे राइज आ रहा है, और ये जो बाय रीचिंग एंड ऑफ 2022 ये प्राइसेस जो है $762 को टच करेंगी. तो और 2023 में जाते जाते ये थोड़ा सा और इससे ऊपर चली जाएंगी, तो 786,252 को कट करेंगी. लेकिन जो डेजा डे वाले हैं जो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये प्राइसेस जो हैं इसमें 15% जो है ये नीचे आए हैं, और अभी तक इन्होंने कहा था, और वो कह रहे हैं कि जी ये तो हमारी अभी की ये हमारी प्रिडिक्शन थी, लेकिन हमें लगता है कि एंड ऑफ 2023 में हो सकता है कि प्राइसेस 20-25% भी नीचे आए.
क्योंकि तो, इनका अंदेशा ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं.
जी बिल्कुल,
नॉट गारंटी कि सितंबर में फिर बढ़ाएंगे ये, मगर ये कि इनका अंदेशा यही है कि अगर अमेरिका में आज की न्यूज जो थी वो जरा मार्केट के लिए अच्छी थी कि भाई हो सकता है इंटरेस्ट रेट को जरा हम ईज कर लें.
तो इस तरह से ये इन्होंने कहा. अच्छा जनाब, ये हमने आपको बिगनिंग ऑफ द वीक बताया था कि अब कुछ पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो ताइवान जाने का सोच रहे हैं कनाडा से, और ट्रूडो साहब ने कहा था कि वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस थिंग, लेकिन फिर भी जो उनकी कमिटीज हैं वो डिसाइड करती हैं कि भाई आपने क्या काम करना है. ये ऐसे अच्छा, इसके ऊपर अब जब चाइना को ये पता चला है तो चाइना ने कहा है कि हम किसी किस्म की कनेडियन इंटरफेरेंस ताइवान के ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे. चाइनीज एम्बेसी जो है कनाडा में, उसने कहा है कि हम कनेडियंस को अर्ज करते हैं कि वन चाइना पॉलिसी जो है उसको रिस्पेक्ट करें, हमारी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करें, और अगर आपने कोई भी इंटरफेयर करने की या इन्फ्रिंज करने की कोशिश की हमारे जो राइट्स हैं और उनकी कदर ना की, रिस्पेक्ट ना किया हमारा, तो फिर हम भी कोई भी एक्शन ले सकते हैं आपके लिए. चाइना ताइवान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप जो है, जो कि एक विजिट अब ऑर्गेनाइज कर रहा है अक्टूबर के लिए, और लिबरल एमपी जूडी सिग्रो हैं उसको हेड कर रही हैं अब, तो वो कह रहे हैं कि जो हम ट्रिप लेके ताइवान जा रहे हैं इसमें हम चाइना की वन चाइना पॉलिसी को डिसरप्ट नहीं करना चाहते और अपने ताल्लुकात भी चाइना के साथ फर्दर खराब नहीं करना चाहते, हम सिर्फ ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं. तो भाई अगर आप ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली चाइना से बात कर लो, तो आप ताइवान के थ्रू क्यों जा रहे हो. हैं जी, यानी कि मैं जड़ा है वे कन इस तरह नहीं फड़ना है, मैं कन जड़ा है ए एंज करके फड़ना है, एंज फड़ना है, एंज नहीं फड़ना, इसी को व्हाट इज दिस माजद भाई, व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है. इधर कनेडा जो है ना बहुत ही नॉटी होता जा रहा है, कनेडा मत करो. अच्छा जी, प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है बेलारूस के, उन्होंने भी आज बड़ी धमकी दी है वेस्ट को.
अच्छा
हाँ, और खासतौर पर उनका जो नेबर है पोलैंड को, उन्होंने कहा जी मेरा बड़ा प्यार है मेरे मित्र दे नाल जड़ा है पुटिन, है जी पुटिन के साथ मेरा बड़ा प्यार है, और पुटिन साहब ने मुझे बताया है कि तुम अपने जो है वेपन्स रेडी रखो, अगर पोलैंड ने कोई मस्ती की या वेस्ट की तरफ से कोई मस्ती आई तो मेरा भरा जो है पुटिन उसने मुझे कहा तुम तैयार रहो, तो हम बिल्कुल तैयार हैं. और एज अ रिजल्ट बेलारूस की मिलिट्री के पास जो हमारे वॉर प्लेन्स हैं उनकी मॉडिफिकेशन हमने ऑलरेडी शुरू कर दी है. एज अ रिजल्ट अब हमारे जो मिलिट्री वॉर प्लेन्स हैं वो न्यूक्लियर हेड्स लेके जा सकेंगे. तो ये बहुत ही डिजेस्ट्रस बयान आ जाया है. ठीक है जी, यानी उसने डायरेक्टली कह दिया है, उसने कोई छुपाई नहीं है बात, उसने कहा कि अच्छा ठीक है हूं भराओ आओ फिर हूं न्यूक्लियर वॉर होगी, है जी आ जाओ फिर. तो ये है, और वो कहते हैं जी कि अगर आपने एस्केलेशन करने की कोशिश की तो आप याद रखना कोई आपका तैयारा, कोई आपका हेलीकॉप्टर, कोई आपका फौजी जो है फिर सेफ नहीं है हमारे से.
और वो जनरल था ना, आप ये थे, ये आर्मी के थे ना
लुकाशेंको को. यस यस, मुक्का तो देखो ना बंदे दा, मुक्का मारे बंदे उसे दीवार से जब बाहर निकल जाए अगला और देखो जरा कितना ऊंचा लंबा मोटा ताजा बंदा है भाई, डरो इसको, डरो लोगो डरो. अच्छा जी, यूरोप के स्यापे जो हैं दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं. आज जनाब नेदरलैंड्स के अंदर भी जो डच रेलवे वर्कर्स हैं वो जनाब स्ट्राइक पे चले गए हैं. और ये है वेस्टर्न रीजन और नेदरलैंड्स, ओके मतलब है ये जी ईस्टर्न रीजन है तो ये वो है कितना सा टिड्डी जितना तो मुल्क है. बहरहाल जी ये आज वो कहते हैं जी पहले नॉर्दर्न रीजन के अंदर स्ट्राइक चल रही थी, अब वेस्टर्न रीजन के अंदर चल गई है. एंड अगेन मुद्दा वही है, इन्फ्लेशन हाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ऊपर चली गई है, जब तक हमारे कॉम्पेंसेशन हमको हम हाई नहीं करेंगे, हमारे वेजेस नहीं बढ़ाएंगे, हम काम नहीं करेंगे. और इसलिए आज जो बेल्जियम की तरफ जो ट्रैफिक जा रही थी या जो मुल्क के अंदर भी जो ट्रेनें चल रही थी वो जरा सस्पेंडेड थी बहुत सारी. तो ये काफी मुश्किल है. वो कहते हैं जी कि कंज्यूमर प्राइसेस जो हैं वो 9.9% से ऊपर जा रही हैं इस वक्त, और ये जो है 4.3% से फर्दर अगले साल ऊपर जाएंगी. तो अगर हमारी सैलरीज ना बढ़ाई गई तो फिर हम मर जाएंगे, तो फिर हम कैसे चलेंगे। अच्छा जी, ये अब दो बहुत ही खतरे में नाक स्टोरियां सुनाई है ना, अब आपको मैं पीआर की स्टोरी सुनाती हूँ। है जी, हमारा प्यारा फोर्ब्स मैगजीन, पता ही है आपको ना, फोर्ब्स में तो सिर्फ ऐसा होता है ना कि बंदा के रिसाला उठा के चूम ले उसको, ऐसी प्यारी उसमें खबरें होती हैं। तो फोर्ब्स मैगजीन की जी ये स्टोरी है, मेरे जैसे गरीब के लिए नहीं है ये, मजद भाई जैसे अमीर लोगों के लिए
जी,
है।
जी,
ये है एच मोजर एंड शी, जो है एक ब्रांड वॉचेस का, हाई एंड वॉचेस बनाते हैं ये जी। इन्होंने अपनी कल एक वॉच लॉन्च की है, इसका नाम है स्ट्रीम लाइनर टूबिलों वेंटा ब्लॉक है जी। तो ये जो है रेड गोल्ड कुशन शेप्ड ये वॉच है, इसका जो डायमीटर है वो 40 mm का है, 12.1 mm इसकी थिकनेस है, और ये 120 मीटर तक वाटर के अंदर अगर आप लेके जाएंगे तो वाटर रेजिस्टेंस है। तो और इसकी कीमत पता है क्या माजिद भाई?
ओनली
120,000 यूएस डॉलर्स। हाँ, नथिंग, पीनट्स,
दो मंगा लो।
हाँ, दो मंगा लेते हैं आप बोलिए।
मैं तो मंगा रहा हूँ चाइना से।
अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरे अगर चाइना से ही मंगवा रहे तो मेरे लिए एक पटी फिलिप मंगवाए, ठीक है,
चाइना से मंगा ले।
हाँ ठीक है, वो जो है ना वो
पर इनको यूएस से कम,
वो स्काई प्रो टू बिलो जो है ना उनकी, $5,00,000 की जो है वो मेरे लिए चाइना से मंगवा
देगी।
ठीक है, चलो ठीक है।
चाइना में तो बन गई ऑलरेडी,
बन गई है। अच्छा ठीक है, बस मंगा लो फिर,
हो गया जी।
फिर मैं सोरे नू तो सल जी, मैं पटी फिलिप पाइए, ठीक है। अच्छा जी, चलो ठीक है। तो ये सिर्फ 120,000 यूएस डॉलर्स की है।
ओके,
हाँ, तो वो कह रहे हैं ये बड़ी चीप हमने बनाई है ताकि
खूबसूरत चीज,
हाँ, ताकि गरीब गुरबे खरीद ले। अच्छा जी, अच्छा जी, यूके के अंदर भी स्यापे जो हैं वो डीप होते जा रहे हैं दिन ब दिन। यूके ने आज अनाउंस किया है,
गेटिंग बैड टू वर्स,
बैड टू वर्स। आज आप इमेजिन कर सकते हैं, हम पाकिस्तान को रो रहे हैं। आज आपको पता है इन्होंने क्या अनाउंस किया कि गैस और इलेक्ट्रिसिटी,
एनर्जी, एनर्जी सारी
80% इंक्रीज, 80%, एंड यू हर्ड इट राइट, नॉट 18 नहीं, 80% इन्होंने जी अनाउंस किया कि हम हाइक कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस प्राइसेस में। ऑफ जैम जो इन चीजों को कंट्रोल करता है, उसने कहा कि अक्टूबर में जाते जाते अगर आप घर का सालाना, ये जो आप इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स आप दे रहे थे $2,331, क्योंकि मैंने डॉलर्स में कन्वर्ट किया पाउंड से, तो ये अब हो जाएंगे $4,198 पर ईयर। तो बैड टू वर्स्ट जाते जनवरी में जाते जाते और बैड टू वर्स्ट हो जाएगा, और ये कीमत जो है 4,198 पर ईयर जो आप इस साल पे करेंगे, अगले साल में जनवरी से ये चला जाएगा $5,914 पर ईयर और मोर। वो कह रहे हैं जी फाइनेंशियली ये ऑलरेडी जो हैं लोग स्क्वीज्ड हैं, जो आज वहां पे इन्फ्लुएंशियल्स जो हैं या के जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, और उन्होंने कहा कि इस दफा का क्रिसमस जो होगा जिंदगी का ब्लीकेस्ट क्रिसमस होएगा, क्योंकि लोग जो हैं मना नहीं सकेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है ऑलरेडी डबल डिजिट्स में चल रही है, और अब हमें खबरें आ रही हैं जो एक्सपर्ट्स ने बताया कि 13% तक इन्फ्लेशन,
तीन टाइम का फूड लेना बड़ा मुश्किल है,
मुश्किल हो गया। हाँ जी,
क्योंकि आपने तो डॉलर्स में बताया ना, मैं आपको जो पाउंड्स में 1971 पाउंड्स अगर आप लास्ट ईयर दे रहे थे, तो इस साल आपको देना पड़ेगा 3,549 पाउंड्स पर ईयर, पर ईयर,
जो कि बनता है 4,198 डॉलर्स पर ईयर।
ये तो आपकी आधी से ज्यादा सैलरी तो चली गई इसमें।
नहीं, आधी क्या, इतनी तो कमा ही नहीं रहे लोग वहां पे। वहां पे लोग कितने, वहां पे तो लोग ज्यादातर 2,000 या 3,000 पाउंड जो एवरेज लोग हैं, हाँ, जो बहुत रईस हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे, एवरेज लोग तो 2,500-3,000 पाउंड से ज्यादा नहीं कमाते।
नहीं, वो भी बहुत सी आप जो बता रही है वो बहुत, अगर वहां पर भी आप $15 घंटे का लगा लें आप, उससे ज्यादा तो वहां पर
नहीं,
भी
नहीं,
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 है ना। तो वो फिर आप ये देख लें कि हर चीज की, अब ये जब ट्यूब की स्ट्राइक हुई है, तो वो भी जब अगर वो पैसे देंगे वर्कर्स को, तो दे हैव टू गेट इट फ्रॉम समवेयर,
इंक्रीज करेंगे टिकट प्राइस,
इंक्रीज करेंगे, और एनर्जी एंड गैस प्राइसेस तो वैसे ही बहुत हाई चली गई है वहां पर भी। तो ये इन सबको देखते हुए तीन वक्त का खाना जो है
मुश्किल,
वो एवरेज पर्सन के लिए बड़ा मुश्किल
हो गया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, रॉयटर्स की आज एक न्यूज है, और रॉयटर्स की इस न्यूज के मुताबिक मॉडर्ना जो है वो फाइजर और उसका जो जर्मन पार्टनर है बायोनटेक, उसको सू कर रहा है इन्फ्रिंजमेंट के लिए। वो कहते हैं जी ये जो एमआरएन डीएनए टेक्नोलॉजी थी, हम तो सालों से इसके ऊपर तजर्बे कर रहे थे।
10 साल पहले उन्होंने पेटेंट कर लिया था,
कर लिया था, और हम तो कोविड-19 के आने से बहुत पहले 10 साल पहले से हम इसको जो है इस पे काम कर रहे थे। एंड अचानक ये कोविड-19 आया और वैक्सीन रोल आउट होनी शुरू हुई, और आप लोगों ने भी एग्जैक्टली हमारा फॉर्मूला उठा के उसके ऊपर जो है अपनी वैक्सीन बना रही है। अच्छा, अब ये जब न्यूज आई है तो उसकी वजह से फाइजर जो है उसके शेयर जो है 1% गिर गए हैं, बायोनटेक के 1.5%, और इवन मॉडर्ना जिसने केस किया है उसके भी 1.7% जो है शेयर गिर गए हैं। मॉडर्ना ने सू किया है जी यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैसाच्यूसेट्स जो है उसके अंदर, और उसने कहा है कि हम अब ये केस कोर्ट ऑफ डेजलडॉर्फ जर्मनी के अंदर भी करेंगे। लेकिन डेजलडॉर्फ की कोर्ट ने कहा है, उनके जो स्पोक्स पर्सन है, कि अभी तक हमें इस तरह की कोई रिक्वेस्ट मिली नहीं है तो हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते। बहरहाल मॉडर्ना ने कहा है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि दुनिया में लोगों को वैक्सीन ना मिले, हम चाहते हैं कि मिले। लेकिन मॉडर्ना के सीईओ ने कहा है कि जी हम ये जो साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट R&D जिस पे कि हम जैसी कंपनियां लाखों डॉलर खर्च करती हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारी टेक्नोलॉजी को चोरी किया जाए।
मगर अगर आपको समझ में आता बात ये कि अगर कहते हैं कि भाई हम इनको स्टॉप नहीं करना चाह रहे क्योंकि पूरी दुनिया को अभी वैक्सीन की जरूरत है, तो हम नहीं चाह रहे कि ये चीज खत्म हो जाए या उनके पास से खत्म कर दें, हम नहीं चाह रहे कि वो बनाना छोड़ दें, तो फिर भी क्या चाह रहे हैं आप?
क्योंकि उनकी भी mRNA है, आपकी भी mRNA है,
तो फिर आप क्या चाह रहे हैं? तो इसका मतलब है यू आर आस्किंग फॉर बिलियंस ऑफ डॉलर्स, दैट्स ऑल, इट ऑल बॉयल्स डाउन टू मनी। सो विल सी व्हाट हैपेंस।
तो हम चाह रहे हैं कि जी आप वैक्सीन ना रोकें, आप वैक्सीन बनाते रहे, लेकिन वो वैक्सीन बनाएंगे कहां, कब, कैसे, अगर आपने केस कर दिया, क्योंकि उनका फॉर्मूला वही है जो आपका है, तो फिर वो कैसे बनाते रहेंगे ना। तो ऐसे अच्छा जी, बाइडन साहब ने कल जो है अनाउंसमेंट ये की थी, की तो परसों रात को थी, ये कल न्यूज आई थी, हम आपके साथ शेयर नहीं थे कर सके। इन्होंने तकरीबन 40 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं अमेरिका में उसको इनका फायदा होगा। इन्होंने कहा है कि मैं हर फेडरल स्टूडेंट का लोन जो है $10,000 तक बिल्कुल वाइप आउट कर रहा हूं, और ये उन लोगों के लिए, यानी देखे मजद भाई अमरीका में सैलरी के स्ट्रक्चर, वो कहते हैं जी ये उन बच्चों के लिए है कि जिनके घर में जो है वो 5,000 पर ईयर जो कमा रहे थे जिनके पेरेंट्स, तो इधर तो बेचारे हार्डली 40,000 या 50,000 ही कमाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद वो कहते हैं जी कि जो हाउस होल्ड जो हैं जिसके के बच्चे जो थे फेडरल बेल ग्रांट्स के अंडर थे, और इसके अंदर भी अंदाजा लगाया गया कि 60% जो बोरोअर्स थे वो फेडरल बेल ग्रांट के अंदर ही थे। तो इसका मतलब है कि इनकी जो है, क्योंकि इनकी अंडरग्रेड जो थी फीस थी वो ज्यादा थी, तो कोई कोई बच्चा तो 20,000 तक भी उसको माफ किया जा रहा है। तो बच्चों ने आज बड़ी खुशी का इजहार किया है, लेकिन जो ऑपोजिशन है वो कह रही है कि ये इंतहाई पॉलिटिकली डिविसिव मूव है, इसलिए कि मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसके लिए ये बाइडन साहब जो है सारा कुछ अनाउंस कर रहे हैगे। ठीक है जी, तो ऑपोजिशन खुश नहीं है इस बात पे। ठीक है जी, अफगानिस्तान के अंदर भी जी बेतहाशा फ्लड्स आए हैं, और उसकी वजह से 180 लोगों की अभी तक जो इत्तला आई है उसमें डेथ हो चुकी है, और वो कह रहे हैं कि इंतहाई डेवस्टेटिंग ये हैं। इनके तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है जबीउल्ला मुजाहिद साहब, उन्होंने कहा जी कि 180 की डेथ हुई है, 250 जो है इंजर्ड हैं, 3,100 हाउसेज जो हैं पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए हैं, लाइव स्टॉक जो है हजारों की तादाद में मर गया है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और दुनिया और खासतौर पे इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो हमारी हेल्प करें, और खासतौर पे हम जो है नेचुरल डिजास्टर्स और भी फेस कर रहे हैं, जैसे कि ड्राउट और अर्थक्वेक जो भी आया था जिसमें कि 1,000 लोग जून के महीने में उनकी डेथ हो गई थी। तो हमारी आपने फाइनेंशियल सिस्टम को जो है उसको भी कट कर दिया, क्योंकि यानी कि फ्रीज कर दिए ना इनके पैसे, वो भी कर दिए, और फंडिंग भी बंद कर दी है, और NGOs भी अब हमको नहीं दे रहे हैं। तो ये हमारे यहां पर होमलेसनेस जो है बहुत फैल गई है। इंटरनेशनल एजेंसीज ने ऑलरेडी वार्न किया था यूएस को और EU को कि अगर आपने हमारे फंड्स जारी ना रखे अफगानिस्तान के लिए तो हम इन लोगों के लिए नहीं काम कर सकेंगे अफगानिस्तान में। एज अ रिजल्ट मिलियंस ऑफ लोग जो हैं दे आर विदाउट शेल्टर और क्लीन वाटर, एंड होमलेसनेस एज आई जस्ट सेड इज इंक्रीजिंग। तो उसके लिए बड़ी परेशानी है। जबीउल्ला मुजाहिद साहब ने एक और आज बयान दिया है, और उन्होंने कहा जी कि ये बहुत दिनों से जो यूएस गवर्नमेंट कह रही थी कि जी ये एमन अज़ुहरी जो है उनको हमने मार दिया है, जब वो अपनी बैल्कनी के अंदर खड़े हुए थे और वहां पे हमारा जो ड्रोन था उसने एग्जैक्टली बड़ी मिसल फायर किया है स्ट्रेटेजिकली, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। तो तालिबान जो है वो कहते हैं जबीउल्ला मुजाहिद साहब कि तालिबान को एमन अज़ुहरी की बॉडी अभी तक नहीं मिली है, हम इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, लेकिन हमको अभी तक पता नहीं चल रहा है कि वो किसको इन्होंने मारा है और वो कौन था, क्योंकि वो ऐमन अल-ज़ुहैरी तो बिल्कुल नहीं था। तो अब इसने जो है क्वेश्चंस क्योंकि बड़े रेज किए थे, यस इन्होंने बड़े, क्योंकि ये दुनिया में बड़े क्वेश्चंस रेज हुए थे, क्योंकि 2020 का जो इन्होंने दोहा के अंदर अमेरिकन और यूरोपियन यूनियन के साथ जो अग्रीमेंट किया था उसमें इन्होंने कहा था कि हम किसी मिलिटेंट या मिलिटेंट ग्रुप को अपनी जमीन के ऊपर नहीं रहने देंगे। और ऐमन अल-ज़ुहैरी जो कि इजिप्शियन डॉक्टर फिजिसिस्ट थे, हमने आपको बताया ही था, और जिनके के बारे में कहा गया था कि सितंबर 11 के जो यूएस में अटैक्स हुए थे उसके अंदर इन्वॉल्व थे और मोस्ट वांटेड मैन थे, तो उसके बारे में यूएस ने कहा था कि हमने जो एयर स्ट्राइक काबुल में किया लास्ट मंथ उसमें इनको मारा है। तालिबान कहते हैं हमें कोई बॉडी नहीं मिली उनकी, तो आपने किसको मारा है हमें नहीं पता।
हाँ, तो मतलब अगर मिसाइल आके मार रहा है बालकनी में तो फिर तो आपको उनका कोई भी ऑर्गन नजर नहीं आएगा।
हाँ, लेकिन वो कहते हैं वहां पे वो रह ही नहीं रहे थे, तो वो आपने किसको देखा और किसको मारा है?
ये तो वही बात होगी ना, ही सेड शी सेड, ही सेड दिस एंड शी सेड दिस, सो हुज राइट एंड हुज रॉन्ग एंड हुज हुज लाइंग एंड हुज टेलिंग द ट्रूथ, नोबडी नोज, बट इतना ये जरूर है कि किसी शख्स को मारा है।
हाँ, मारा है जरूर, तो वो कहते हैं जी किसी को मारा जरूर है आपने, लेकिन वो ऐमन अल-ज़ुहैरी नहीं है। अच्छा जी, अब पता चलेगा। अच्छा जनाब, इंडिपेंडेंट कांग्रेशनल रिसर्च बॉडी एक है जिसका कि उन्होंने एक टू पेज एक रिसर्च निकाली है, कांग्रेशनल रिसर्च सर्विसेज, और इसका जो रिपोर्ट थी इसका इन फोकस रिपोर्ट थी, और इसका टाइटल था इंडिया ह्यूमन राइट्स असेसमेंट, जो है ये इसका टाइटल था। इसके अंदर इन्होंने कहा है जी कि अमरीका ने अगर हिंदुस्तान को एड देते जाना है, जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि 117 मिलियन इन फॉरेन असिस्टेंस हम इंडिया को देंगे फाइनेंशियल ईयर 2023 में, तो वो कहते हैं जी इसके ऊपर जरा आप थोड़ा सा गौर करो, क्योंकि हमारे बहुत सारे कंसर्न्स हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो है ह्यूमन राइट्स अब्यूज चल रही है। दो कंट्रीज ये जो दोनों हैं, इंडिया और अमेरिका, इनके बीच इस वक्त जो फिगर्स आई हैं कि 2021 में 157 बिलियन यूएस डॉलर्स की ट्रेड की गई थी, लेकिन ये जो अब रेजोल्यूशन आई है इसके अंदर और फर्दर तीन रेजोल्यूशन जो हैं वो रिपोर्ट के अंदर डाली गई हैं, और वो कह रहे हैं जी कि हिंदुस्तान के अंदर अब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, और यहां पे रिटेलिएटरी किलिंग्स हो रही हैं हर उस जर्नलिस्ट की जो गवर्नमेंट की अगेंस्ट लिख रहा है, इंटरनेट ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, और जो हमने एक रिपोर्ट हाउस रेजोल्यूशन दिया था 1095 उसका नाम था हाउस रेजोल्यूशन 1095, तो उसमें भी हमने कहा गया था कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स जो हैं उसको वायलेट किया जा रहा है। और ये जो रिपोर्ट है अभी पब्लिश हुई है अगस्त 23 के ऊपर, जिसमें कि उन्होंने कहा है जी कि यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज तक ने ये आइडेंटिफाई किया है कि वहां पर बहुत सारे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज हैं, एनजीओज जो हैं उनको वो फेस कर रही हैं ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज, और जो स्टेट का बड़े एलिगेशन ये उन्होंने लगाए हैं कि स्टेट जो है फेडरल भी और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो एजेंसीज को हायर कर रही हैं जो लोग उनको पसंद नहीं है उनको दीवार के साथ लगाने के लिए, और ये अब्यूजेस इस रिपोर्ट ने कहा है कि मोदी जी और उनकी जो हिंदू नेशनलिस्ट बीजेपी है उसके अंदर बढ़ गई है, और जिस वक्त से इनका री इलेक्शन हुआ है 2019 में उस वक्त से ये ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये जो डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग चल रही है हिंदुस्तान में उसमें हम पूछना चाहते हैं कि अमरीका कब तक अपने इस एलआई के साथ खड़ा रहेगा। इससे पहले जो स्टेट डिपार्टमेंट की 2021 रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स आई थी उसमें भी ये बड़ा क्लियरली बताया गया था कांग्रेस को कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं इंडिया में उनको बेतहाशा किलिंग्स असॉल्ट्स इंटिमिडेशन उनके ऊपर थ्रू आउट द ईयर चलता रहा है 2021 में, और इतनी बड़ी ये रिपोर्ट उस वक्त आई थी कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब थे जो कि इंडिया जाके बिल्ली बन गए थे बिल्कुल ही, उन्होंने उस वक्त जरूर कहा था कि हमें पता चल रहा है कि ये लोगों के ऊपर और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप उनके ऊपर बड़ा अटैक है, लेकिन जाहिर है कि हिंदुस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उसने इसको बिल्कुल इल इन्फॉर्म्ड रिमार्क्स कहा है, और उन्होंने कहा इसमें कोई सच्चाई नहीं है और कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग इंडिया को बैड नेम देने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स अ कंप्लीट रबिश। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह कहा है किसको, अमरीका को।
कनेडियन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन मार्केटिंग की जानिब से पेश खिदमत है फंटास्टिक फैमिली फन फेस्टिवल, एक बार फिर आ रहा है आपके शहर ब्रैम्पटन में, और साथ ला रहा है तरह तरह के चटखारेदार खाने, बच्चों के खेल, झूले, मुकाबले, लाइव शोज, ओपन एयर बाजार, शायकीने क्रिकेट के लिए अजीम शान क्रिकेट टूर्नामेंट और बहुत कुछ, जबरदस्त तफरी और दाखिला बिल्कुल बिल्कुल मुफ्त ऑन अगस्त 26, 27 and 28 एट CAA सेंटर ब्रैम्पटन। मजीद मालूमात और फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए विजिट करें fantasticfest.com।
द मोस्ट ग्लोरियस, द मोस्ट एक्साइटिंग, द मोस्ट स्टार स्टडेड इवनिंग इज रिटर्निंग फॉर इट्स 8th एडिशन। हम अवार्ड once again in Canada on 24th September 2022, First Ontario Center. To book your tickets, log on to www.ticketmaster.ca. For Canadian sponsorships, please call 905-849-5551 or log on to humawards.ca.
Ji.
हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा जनाब, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में रिफ्स बहुत ज्यादा अब बढ़ती चली जा रही हैं। आज तो आम आदमी पार्टी ने और भी ज्यादा एलिगेशंस लगाए हैं बीजेपी के ऊपर, और उन्होंने आज तो ये कहा है कि जी 40 ऑफ आवर MLAs हैं। पहले तो कहा था ना कि 12 या 13 या कुछ लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, आज उन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया कि 40 जो हैं, हालांकि 53 इनके जो हैं MLAs हैं, तो उसमें से वैसे जो लेजिस्लेटर्स हैं सारे वो तो 62 हैं ऑल टुगेदर। तो वो कह रहे हैं जी कि इसमें से जो 40 के करीब हैं उसको बीजेपी ने पता है कितना कितना ऑफर किया पर पर्सन, 20-20 करोड़ रुपया।
मगर दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी,
हाँ,
दिस इज ओनली वन साइड।
हाँ जी, तो वही तो वो कह रहे हैं जी इन्होंने किया है। और आज इन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने तमाम MLAs के साथ वहां पे महात्मा गांधी मेमोरियल राजघाट के ऊपर ये पहुंचे थे और वहां पे ये सारे बैठे हुए थे, और वहां पे इन्होंने जो है मोर्चा निकाला है, और इन्होंने प्रोटेस्ट में और इन्होंने कहा है कि ये जो ऑपरेशन लोटस ये जो बीजेपी लेकर आया हुआ है ये बुरी तरीके से फेल हो गया है, और CBI और ED को अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि तुम प्रोब करो कि ये जो पोचिंग का जो कल्चर अब बीजेपी चला रहा है इसके ऊपर जो है आपको एक प्रोब बिठाने की जरूरत है। ऑफ कोर्स बीजेपी के जो MP हैं मनोज तिवारी, उन्होंने कहा है कि आप जो है लोगों का अब अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो केजरीवाल साहब हैं उनसे जब से कोई सवाल किया जाता है तो वो बिल्कुल मौन डाल के बैठ जाते हैं, यानी कि चुप करके बैठ जाते हैं, साइलेंस कर लेते हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी कैसी है तो उसको वो डॉज करते हैं, कोई और पॉलिसीज पूछी जाती हैं दिल्ली सरकार से तो उसके ऊपर वो डॉज करते हैं। तो अब जब ये इस तरह के डॉज करेंगे तो उनसे जब सवाल किया जाएगा तो वो बीजेपी पे इल्जाम लगाएंगे। आप कहते हैं कि हम बीजेपी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, हमें पता चला है कि आपने इतने पैसे देके इन लोगों को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश की है, क्योंकि आपको लगता है कि दिल्ली में आप फिर से हारेंगे इस दफा, तो इसलिए ये है। इसके बाद जी जो अरविंद केजरीवाल जो हैं उनके घर पे जो थे कुछ लोग जमा हुए हुए थे इनके जो MLAs हैं, और उनसे बात करते हुए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने आज बहुत ही सख्त किस्म की बात की। उन्होंने बीजेपी को सीरियल किलर कहा, तो उन्होंने कहा कि जब आपकी गवर्नमेंट्स गिर गई महाराष्ट्र कर्नाटका और दूसरी जगहों पे, तो फिर आपने क्या किया, आपने एज अ सीरियल किलर जो है वो दिल्ली के अंदर एंटर होने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने एक अखबार की कटिंग जो है फिर जिस वक्त दिल्ली में उन्होंने वो उधर अपनी असेंबली में बैठे तो वो भी दिखाई, और उन्होंने कहा कि ये है आपकी रेप्यूटेशन कि आपकी गवर्नमेंट और ये इस तरह से कर रही है, और आप ये जो एजेंसियां हैं गवर्नमेंट की CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इनको अपोजिशन के खिलाफ जो है उनको डराने धमकाने के लिए यूज कर रहे हैं, और इनको जो है आप मैं बताना चाहता हूं एजेंसीज को कि जैसे ही ये इनकी गवर्नमेंट गिरेगी तो ये सारी भी जो है एजेंसियां गायब हो जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने दोनों तरफ को वार्न किया, बीजेपी को भी और इन एजेंसीज को भी। पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है जी उसने डेवस्टेटिंग ये जो फ्लड्स आए हुए हैं उसके लिए जो है स्टेट ऑफ इमरजेंसी अब अनाउंस की है, और उसको नेशनल इमरजेंसी कहा है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स के अंदर 1000 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है, 30 मिलियन लोग जो हैं वो दे आर विदाउट शेल्टर, 937 जो हैं वो तो मिड जून तक उनकी डेथ हो चुकी थी, जिसमें कि 343 जो थे वो बच्चे थे। ये आज रिपोर्ट जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दी है, उन्होंने कहा है कि बहुत बड़े बड़े हिस्से जो बलूचिस्तान में हैं वो और सिंध के अंदर हैं वो बिल्कुल पानी के अंडर चले गए हैं, और मुल्क की बहुत बुरी हालत है। और लोगों का कहना है जी कि गवर्नमेंट जो बार बार यहां पर आके अनाउंसमेंट्स कर रही है कि हम इतनी रिलीफ दे रहे हैं कोई गवर्नमेंट का बंदा हमें आके रिलीफ नहीं दे रहा, हमारे पास सिर्फ वॉलंटियर्स और एनजीओ के लोग जो हैं वो आके हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प हमें नहीं पहुंच रही। इसके अलावा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब जो है उन्होंने कहा जी कि फ्लडिंग की वजह से बेतहाशा डेथ्स हुई हैं और ये एक नेशनल इमरजेंसी है और इसमें हमको नेशनल स्पिरिट के साथ काम करना पड़ेगा। जो डिजास्टर सिंध और बलूचिस्तान में है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में आज क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर शेरी रहमान साहिबा कर रही थी और वो कह रही थी कि पाकिस्तान का जो साउथ है सारा वो बहुत बुरे हालत में है, हमको बहुत सारे रिसोर्सेज जमा करके इस नेशनल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान आर्मी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसके ऊपर रिलीफ का काम कर रहे हैं लेकिन 20 मिलियन लोग जो हैं वो अब होमलेस हो चुके हैं, उनके पास शेल्टर नहीं है और बहुत सारी डेथ्स हो चुकी हैं। तो उन्होंने आज दुनिया को कहा कि पाकिस्तान को आपकी हेल्प चाहिए। तो पायन तुसी अपनी हेल्प खुद कदों करना शुरू करोगे? अच्छा अच्छा जी, अब ये जो इमरान खान साहब हैं जी, इनका आपको पता ही है कि पार्टी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है जब से कि खास तौर पे बातें हुई हैं ये जो शहबाज गिल के सिलसिले में। तो आज पार्टी के अंदर से बहुत सारे लोग और फैसल वावडा और परवेज खटक और इवन पीएमएल क्यू के जो लीडर्स हैं परवेज इलाही और मुनस इलाही वगैरह वो अब कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि भाई मिलिट्री एसोसिएशन जो है और मिलिट्री जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके खिलाफ आप इतना ज्यादा ना जाएं क्योंकि आपको कुछ लोग गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं और आपके ऊपर ट्रीजन के इतने केसेस लगा दिए जाएंगे कि आपकी पार्टी और आपकी सियासत को ही खत्म कर दिया जाएगा। फैसल वावडा का तो ये तक कहना था कि कुछ लोग जो हैं इमरान खान साहब को कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपके जो कुछ लीडर जो सीनियर आपके पास हैं दे आर स्नेक्स इन द ग्रास, तो आप उनसे थोड़ा सा वो रहें क्योंकि वो चाहते हैं कि आप डिसक्वालीफाई हो जाएं और आपको कभी भी प्रीमियरशिप ना मिले, तो आप इन लोगों को समझें और इतना भी अपना रेट्रिक जो है उसको हाई ना करें और चीजों को जरा कूल डाउन करने की कोशिश करें। तो बहरहाल अच्छी बात होगी जी अगर दोनों तरफ से दोस्तियां हैं। इंटीरियर मिनिस्टर राजनाथ सनाउल्ला मजद भाई के बड़े फेवरेट जो हैं वो एक टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा है जी कि ये जो मेरे ऊपर नारकोटिक्स का केस बनाया था इसके पीछे मिलिट्री नहीं है, क्योंकि अब मिलिट्री के साथ अच्छे तालुकात इन्होंने करने हैं, मिलिट्री नहीं है इनके पीछे इमरान खान है। अच्छा उन्होंने कहा जी, वो पूछा एंकर ने कि आपको कैसे पता है, कहते जी मेरे पास एक बदरा बयान सुने, मुझे मिलिट्री का एक आदमी आके मिला
उसने कहा हम
और उसने कहा कि भाई आप एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करो हैं, वो उसने जब रिपोर्ट सबमिट की तो वो रिपोर्ट जो है इंक्वायरी के लिए जनरल बाजवा को भी भेजी गई, फिर जनरल बाजवा ने कहा कि नहीं नहीं तुम इन्वॉल्व नहीं हो इसमें, तो इसलिए जो है वो मिलिट्री नहीं है इसके पीछे। हालांकि जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स वाले थे जब उन्होंने इनको रोका था जब ये फैसलाबाद से लाहौर जा रहे थे रावी टोल प्लाजा पे, तो उन्होंने कहा था 2019 में, तो उन्होंने कहा था जी कि इनकी गाड़ी से हमको 15 kg हेरोइन मिली थी और हमें इतला मिली थी कि ये ड्रग्स स्मगल कर रहे हैं लाहौर की तरफ और इनके पास जो है वो कुछ असला वगैरह भी मिला था। तो अब ये कह रहे हैं नहीं नहीं ये सारी इमरान खान की साजिश है और ये इसके अंदर कोई मिलिट्री का हाथ नहीं है, तो भाई फिर मिलिट्री के बंदे ने आपको अप्रोच क्यों किया भाई?
हाँ जी
है जी, पहले एडा भी पागल ना बनाओ भाई।
उन्होंने कह दिया कि नहीं आप नहीं
आप हम नहीं है इसमें शामिल, इंक्वायरी जनरल बाजवा करेंगे,
राणा दूसरा राणा,
हाँ दूसरा राणा कोई और है वो। हाँ जी, अच्छा जनाब चौधरी फवाद साहब ने आज कहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो ट्रीजन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं दे आर इन बैड टेस्ट और उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को किसी सूरत इमरान खान साहब जो हैं वो सॉरी नहीं बोलेंगे। और उन्होंने वो जो फीमेल जज हैं जेबा चौधरी उनके रिमार्क्स के ऊपर भी कहा कि उनको शर्म आनी चाहिए कि ये लीगल सिस्टम ये लोग चला रहे हैं और ये किस तरह का इन्होंने मजाक मचाया हुआ है। और उन्होंने तारीफ की एक यंग मैजिस्ट्रेट की जिसने के कहा था कि जो शहबाज गिल के ऊपर जो टॉर्चर हो रहा है उसको मैं रिफ्यूज करता हूं देने से क्योंकि उसके ऊपर आपने पुलिस ने टॉर्चर किया है। और इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने कहा जी कि मुझे हैरत है कि कितनी इनसेंसिटिविटी है पुलिस के अंदर और जुडिशरी के अंदर के टॉर्चर के एलिगेशंस जो हैं उनको भी सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। और वो कहते हैं जी कि जो शहबाज गिल साहब जो हैं उनके जो प्राइवेट पार्ट्स थे उसके अंदर इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए थे, तो ये किस तरह का बारबेरिक एक्ट है जो इस मुल्क के अंदर जो है वो चल रहा है। और पाकिस्तान जो है अगर उसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ हमको बनाना है तो इस ये जो जुल्म और जबर है इसके खिलाफ हमको खड़ा होना पड़ेगा और जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको गवर्नमेंट के किसी भी मामले में इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए जैसे कि पीटीआई की गवर्नमेंट के बीच में हमने किया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद ने आज बड़ा सख्त नोटिस लेते हुए, जब ये बहुत सारे एलिगेशंस आए हैं आपके जी शहबाज गिल साहब के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर और सेक्सुअल टॉर्चर तक भी किया गया है, तो उन्होंने कहा है जी कि कल मेरे सामने हाजिर होना चाहिए जो है ये जो इनके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सुप्रा हैं, उन्होंने कहा कि मेरे सामने कल हाजिर होना चाहिए सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, और इसके अलावा वो पूरी रिपोर्ट जो कि कहती है कि शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर किया गया है। तो जनाब ताहिर अब्बास सुप्रा साहब की कोर्ट को बताया गया कि जनाब वो जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं वो तो जी कराची गए हुए हैं, वो इधर है नहीं,
छुट्टी पे गए,
हाँ वो छुट्टी पे गए हुए हैं। तो अदालत ने उनसे पूछा कि क्या उनको समन नहीं भेजे थे, उनको बताया नहीं था कि उन्होंने अदालत के सामने आना है? नहीं जी, वो उनको काम था, इधर गए थे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जी, अब तो उसमें जी थोड़ा टाइम लगेगा। अदालत ने कहा कोई टाइम नहीं है, कल सैटरडे को उनको बोलो हाजिर होए, कराची कोई मुल्क से बाहर नहीं है, कराची मुल्क के अंदर है, हाफ एन आवर की फ्लाइट है, उसको बोलो पकड़े फ्लाइट और आए, और सारी रिपोर्ट भी मुझे चाहिए। अच्छा जी, वो तो कल आ जाएंगे अदालत में, रिपोर्ट आपको मंडे को देंगे। अदालत ने कहा वो हम देखेंगे, आप पहले आओ। तो उसके ऊपर ये जो शहबाज गिल के जो थे लॉयर्स जो हैं फैसल चौधरी और सरदार मसरूफ खान, उन्होंने कहा जी हम टिकट दे देते हैं उनको, सब इंस्पेक्टर साहब को हम टिकट देने के पैसे देने को तैयार हैं, तो वो आ जाएं कराची से, तो जरा आके रिपोर्ट भी दें। और वो तो उन्होंने कहा जी कि हम हर हाल में मुझे ये रिपोर्ट दी जाए, वरना बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इसीलिए इसके साथ ही उन्होंने जो शहबाज गिल के जो भाई हैं उन्होंने वो जो एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट जज हैं ज़ेबा चौधरी उसके खिलाफ भी आज फाइल डाली, और उन्होंने कहा जी कि एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है अपना औरत होने का इतना नाजायज फायदा कैसे उठा सकती हैं, और मेरे भाई के लिए पुलिस कस्टडी में रिमांड का हुक्म कैसे दे सकती हैं, जबकि उसके खिलाफ कोई चीज जो थी अभी प्रूव भी नहीं हुई थी। तो ये सारा कुछ जी आज इस्लामाबाद में होता रहा। और जनाब कराची के जो कुछ इलाकों के लोग हैं वो बेतहाशा हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की वजह से सड़कों पर निकले हुए थे, खास तौर पे चुरंगी वगैरह के इलाके के अंदर, और वहां पे इतनी ज्यादा फिर वो हुल्लड़बाजी हो गई, फिर वो गुत्थम गुत्था हो गए, फिर कुछ लोगों ने कुछ ने लेकिन उनको कंडेम किया गया, उन्होंने कोई दो चार टायर जलाए वहां पे, तो उनको बहरहाल वहां पे जो लांडी डिस्ट्रिक्ट के एसपी और अवामी कॉलोनी के जो पुलिस अफसर हैं वो आए और उन्होंने डिस्पर्स किया इनको। और इस बीच में मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो कहते हैं कि हाँ जी गवर्नमेंट अब सोच रही है, डिफरेंट ऑप्शंस देख रही है कि किस तरह जो है लोगों को पावर के जो आउटरेजेस हो रहे हैं और बिल ज्यादा आ रहे हैं उसमें कैसे रिलीफ दी जाए। तो अब ये जब रिलीफ आएगी तब देखेंगे। आज जो है आपको पता ही है हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार थे पॉल न्यूमन, आपने उनकी मूवीज भी देखी होंगी, उनकी आज जो दो बेटियां हैं उन्होंने जनाब इनकी जो फाउंडेशन थी ओन फाउंडेशन पॉल न्यूमन साहब की उसके ऊपर जो है एक लॉ सूट फाइल किया है, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि जब हमारे वालिद साहब ने पॉल न्यूमन ने जब ये फाउंडेशन बनाई थी तो उन्होंने कहा था कि इसमें से हर साल 400,000 ईच मेरी बेटी जो है उसको मिलेगा, लेकिन ये जो फाउंडेशन है अब हमें नहीं दे रही है। इनकी बेटियां जो हैं सूजन कैंडल एंड नेल न्यूमन, इन्होंने अब कहा है जी कि ये अब फाइल हम कर रहे हैं लॉ सूट कनेटिकट में, और डैमेजेस हमको पे किए जाएं 1.6 मिलियन के, क्योंकि जब अपनी डेथ से तीन साल पहले 2008 में इन्होंने ये फाउंडेशन बनाई थी तो उसमें बहुत क्लियर डायरेक्टिव्स दिए थे और फाउंडेशन उन डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं कर रही है।
पॉल न्यूमन वेरी हैंडसम गाय,
ओह वेरी हैंडसम, और क्या स्टार था, ओहो वेरी नाइस। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब सिल्वेस्टर स्टालोन और उनकी वाइफ जो हैं जेनिफर फ्लेविन, उनके बीच में हो गई है डिवोर्स, लेकिन सिल्वेस्टर स्टालोन ने कहा है कि जी आई लव माय फैमिली, तो इसलिए बड़े एमिकेबली और प्राइवेटली वी आर एड्रेसिंग दीज पर्सनल इश्यूज। और इससे पहले फ्लेविन जो थी उन्होंने पाम बीच काउंटी फ्लोरिडा के अंदर डिवोर्स फाइल की थी, और उन्होंने कहा था कि जी मेरी मैरिज को डिसॉल्व किया जाए और मुझे रिलीफ भी दी जाए। इनकी शादी जो थी 1997 में हुई थी दोनों की, और फ्लेविन जो है उन्होंने रिपोर्टर्स को कहा कि हमारी मैरिज तो अब नहीं है, लेकिन जो 30 ईयर्स हमने साथ गुजारे हैं आई स्टिल चेरिश देम, और जो मेरी दो ब्यूटीफुल बेटियां, जो तीन ब्यूटीफुल बेटियां हैं स्कारलेट जिसकी एज 20 है, 16, 24, सोफिया 25, तो हमको अभी भी दोनों को
वेरी लॉन्ग टाइम
30 ईयर्स, तो वो अभी उन्होंने कुछ अर्सा पहले जो था अभी कोई तीन चार अभी ये जब कोविड के शुरू होने से पहले इन्होंने 25th वेडिंग एनिवर्सरी मनाई थी अपनी, तो इस तरह से। तो वो कह रहे हैं जी कि हम बड़े क्वाइटली ये कर रहे हैं तो हमें प्लीज गिव अस सम स्पेस। और जनाब शाहरुख खान साहब ने आज अपना जो है कल रात को इनफैक्ट जॉन अब्राहम के का जो एक पोस्टर है पठान में, जैसे उनकी अपीयरेंस आएगी वो उन्होंने जारी किया है, और उन्होंने उसमें देखा जा रहा है कि ये जो जॉन अब्राहम साहब हैं बड़े ही खतरे में नाक किस्म के इस स्टाइल में खड़े हैं, वाइट उन्होंने टी शर्ट पहनी है, ब्लैक पैंट्स हैं, और पेट के गिर्द उन्होंने एक हॉर्नेट सा बांधा हुआ है, और रूम जो है वहां पे आसपास जो जगह है वो सारा उड़ा हुआ है, तो उसके बीचों बीच ये खड़े हुए हैं। तो शाहरुख खान साहब ने कहा है कि जी ये जो है लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अमेजिंग मूवी, और ये वो तो ऐसे चक्कर है। और जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने वो जो इंटर डिपार्टमेंटल जो स्पोर्ट्स के ऊपर जो बैन लगाया था इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को, उसको फिर से खोल दिया है। और इसको इसलिए बैन लगाया गया था क्योंकि ये जो स्पोर्ट्समैन थे इनका लेवल बहुत वो नीचा कर देते थे, और चूंकि उनकी वो नौकरियां बनी रहती थी तो वो इतना हार्ड वर्क करते नहीं थे। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, इससे बहुत सारे लोग जो है आउट ऑफ जॉब है, इसलिए जो है आज इनकी मुलाकातें जो थी कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ साहब की हुई थी जेवलिन थ्रो, अरशद नदीम और तला तालिब और बाकी के जो पाकिस्तान टीम गई थी अभी ओलंपिक्स के अंदर जो गई हुई थी, जिसमें कि बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था, उनसे मुलाकातें कर रही थी, और उस वक्त इन्होंने वादा किया था कि हम ये डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स जो है फिर से शुरू करेंगे। तो आज इसकी जी अनाउंसमेंट की गई है, और इनकी जो फंडिंग बंद कर दी थी कि टीम्स को पैसे दिए जाएं ताकि टीम्स डेवलप की जाएं, डिपार्टमेंट्स जो है पैसे खा जाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, डिपार्टमेंट्स को दो पैसे तो ताकि लोगों को जॉबें मिलें। तो ये है जनाब, ऐसे है। एंड जनाब ये जो है एएफपी की आज रिपोर्ट है, और एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक जनाब ये जो एशिया कप होने वाला है ना जी मजद भाई, सैटरडे से कल से शुरू, उसमें वो कह रहे हैं 5 लड़के देखने के लायक होंगे, ठीक है जी, एएफपी के मुताबिक। अच्छा जी वो 5 लड़के कौन है? 5 लड़कों में सबसे पहले तो है जी बाबर आजम, उन्होंने कहा है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो तो इंजर्ड है, तो वो बॉलिंग तो डिपार्टमेंट जरा पाकिस्तान का कमजोर हो गया, तो इसलिए तमाम ऑल द आईज विल बी ऑन बाबर आजम, ही इज 27 ईयर्स ओल्ड, बड़ा वो कहते हैं जी डैशिंग बैट्समैन है, लेकिन अभी देखेंगे जो इनका मैच है पहला ओपनर जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसमें ये कैसा परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा विराट कोहली 33 ईयर्स उनकी एज है, और ये अपना 100th T20 खेलेंगे जब ये पाकिस्तान के फेस करेंगे। इससे पहले इनको वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के टूर्स में रेस्ट कराया गया था, 2019 में इन्होंने अपनी लास्ट सेंचुरी हिट की थी और अपने जो करियर के बड़े बैड फेज में है, लेकिन वो कहते हैं शायद इंडिया पाकिस्तान के मैच में ये क्लिक कर जाएं। इसके अलावा जनाब श्रीलंका के जो वनिंदु हसारंगा हैं, 25 ईयर्स इनकी एज है, लेग स्पिनर हैं, 26 विकेट्स लिए हैं 16 मैचेस में आईपीएल में इन्होंने, तो ये कहते हैं जी कि ये बाकी के जो अपने स्पिनर्स हैं महेश थिक्षाने और जेफरी वंडरसे और प्रवीण जिया विक्रमा, तो उनके साथ देखेंगे कि ये क्या मैजिक क्रिएट करेंगे श्रीलंका के लिए। इसके अलावा बांग्लादेश के शकीब उल हसन 35 ईयर्स उनकी एज है, और बहुत ही कंसिस्टेंट ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और स्पिनर हैं, लेकिन इनको गैम्बलिंग की बहुत आदत पड़ गई थी, तो इनको कहा गया था कि भाई अगर तुमको कैप्टेंसी करनी है तो गैम्बलिंग से दूर रहो। तो ये भी अपना 100th T20 मैच खेलेंगे जब बांग्लादेश अफगानिस्तान के साथ खेलेगा ट्यूजडे को, तो वो कहते हैं जी ये भी लड़का देखने के जैसे होगा कि ये कैसे करेगा। एंड पांचवा सबसे प्रॉमिसिंग जो है इसके अंदर वो कह रहे हैं जी राशिद खान है, 23 ईयर्स इसकी एज है, अफगानिस्तान का जो है वो बड़ा जबरदस्त बॉलर है, 112 विकेट 66 T20s में इसने ली हैं, तो ये भी बहुत डिजास्ट्रस जो है वो बॉलिंग करा सकता है, तो ही विल ऑल्सो बी प्लेयर टू वॉच। तो ये 5 हैं जी इनकी प्रेडिक्शन के, ये कुछ
कमाल सुपर स्टार्स
हैं। और जनाब पाकिस्तान जो है वो अब एशिया कप के लिए अपनी आईसीसी एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन यहां पे मीडिया पहुंच गया और उन्होंने 2 डिफरेंट इंटरव्यूज जो हैं लिए हैं, एक जो पाकिस्तान के बैटिंग कोच है मोहम्मद यूसुफ से और दूसरे जो हेड कोच हैं सकलेन मुश्ताक से। तो मोहम्मद यूसुफ से उन्होंने जब बात की, उन्होंने कहा इंडिया पाकिस्तान के मैच को आप कैसे देख रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि ये हम सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच को नहीं देख रहे, हम सारे टूर्नामेंट को देख रहे हैं, और इंडिया के साथ जो मैच है वो एक मैच है, हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है पाकिस्तान का, क्योंकि अभी जो है 3 उन्होंने ऑफ लास्ट 4 T20s जो हैं वो जीते हैं, और अभी इन्होंने वेस्ट इंडीज और नेदरलैंड्स जो है उसके ओडीआई में क्लीन स्वीप किया है. तो पाकिस्तान इज गोइंग इन द टूर्नामेंट विद कॉन्फिडेंस. तो हम सोचते हैं कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी. फिर जी वहां पे उन्होंने सकलेन मुश्ताक जो है उनसे बात की मीडिया ने. उन्होंने कहा जी आपका क्या ख्याल है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो तो नहीं है यहां पर अब आपकी टीम में, तो वो बड़े डिजास्ट्रस किस्म के बैट्समैन थे. तो सकलेन मुश्ताक ने कहा जी कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो सिर्फ एक बॉलर है एंड इट्स पार्ट ऑफ द गेम. अगर वो इंजर्ड है तो कोई बात नहीं है. मुझे लगता है कि हमारा पेस अटैक जो है वो बड़ा अच्छा है, उसमें नसीम शाह है, हारिस रऊफ है,
नसीम शाह पे बड़ा प्रेशर पड़ा हुआ है
बहुत ज्यादा और मोहम्मद हसनैन है, और अब तो खबर आई है कि अब एक और भी हसन अली को भी ले आए. तो वो कह रहे हैं जी कि हमारा हम बड़ी वेल राउंडेड हमारी परफॉर्मेंस है, और इन लड़कों ने जो है खासतौर पर हसनैन ने जो अभी द हंड्रेड में खेला है यूके में, और बाकी लड़के जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे हैं तो वो वेल राउंडेड है. और पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है अगेन इन्होंने भी कहा कि इट्स जस्ट अनदर मैच, और इसके ऊपर हम उसको मैच के तौर पर एक जस्ट अनदर मैच के तौर पे ही लेंगे, जीतेगा वो जो उस दिन अच्छी क्रिकेट खेलेगा. तो इसलिए उन्होंने भी डाउन प्ले किया इस चीज को. पीसीबी ने आज अनाउंस किया है जी कि मोहम्मद वसीम जूनियर जो है शायद वो, क्योंकि उसको स्प्रेन आ गया है अचानक से खेलते हुए तो ट्रेनिंग के बीच में, तो वो कह रहे हैं जी कि उसकी प्रैक्टिस सेशन तो चल रही है लेकिन वो इंजर हो गया, तो हम उसको अभी के लिए जो है हसन अली से रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली उसकी जो है हम रीहेबिलिटेशन मॉनिटर करेंगे और रीएवेल्युएट करेंगे उसको कि वो खेल सकेगा. अगर अब ना खेल सका तो फिर यूके जो टूर कर रहा है, जो इंग्लैंड टूर कर रहा है पाकिस्तान का, उसमें उस लड़के को भी हम खिला सकते हैं. लेकिन हसन अली को अभी तक इवेंट टेक्निकल जो कमेटी है उसने गो अहेड नहीं दिया है. जैसे ही मिलेगा उसको तो फिर वो यूएई के लिए जाएगा. एंड जनाब ये कल खबर आपने जरूर सुनी होगी, हमारे नोवाक जोकोविच जो के नो वैक्सीन लगवा रहे हैं तो वो अब न्यूयॉर्क सिटी नहीं जाएंगे यूएस ओपन खेलने के लिए. अनदर ग्रैंड स्लैम जो है ये करेंगे मिस. तो इन्होंने जोकोविच ने कहा कि जी मैं आई एम इन अ गुड शेप एंड पॉजिटिव स्पिरिट, तो कभी तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं कम होंगी और मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि यूएस ने वैसे तो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो डोमेस्टिकली तो कम की हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए अभी भी वो कहते हैं कि या के जो पीआरस हैं उनके लिए कि अगर आप कंट्री में आएंगे तो आपका फुली वैक्सीनेशन
वैक्सीनेटेड वैक्सीन ही लॉस्ट मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स.
जी हाँ जी हाँ जी है हूं जी सी सुनावे तो. और जनाब बड़ी विंड्स ऑफ चेंज आई हैं, ईरान की गवर्नमेंट के ऊपर बड़ी प्रेशराइज किया गया उसको इंटरनेशनली अपेरेंटली हालांकि ईरान किसी का प्रेशर लेता तो नहीं है, लेकिन उनको कहा जी कि औरतों को तुमने जो है गेम्स जो हैं देखने से उनको स्टेडियम में आने से क्यों दूर रखा हुआ है. तो अब इनके वहां पे आजादी स्टेडियम जो है जी तेहरान में वहां पे मैचेस चल रहे थे, तो 500 ईरानियन विमेन दे वेंट विद द टीम दे वर सपोर्टिंग, उसके कलर्स और फ्लैग्स लेके गई हुई थी. हालांकि औरतों और मर्दों के बैठने के एरियाज भी डिफरेंट है और उनकी एंट्रेंस भी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी औरतें लार्ज नंबर पे आईं. इनको कहा गया कि भई अपने सर ढांप के बैठें और अच्छी प्रॉपर ड्रेस पहन के आप बैठें, और इनको जनाब 40 ईयर्स के बाद इजाजत मिली है औरतों को स्टेडियम में आके मैच देखने की और चीयर करने की. पायन ये क्या हो रहा है. एंड जनाब अगेन आवर फेवरेट मैगजीन फोर्ब्स ने आज फिर दिल दुखाने वाली खबर, ये बड़ी दिल दुखाने वाली खबरें देता है. वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड टेनिस प्लेयर्स है जी, उसकी लिस्ट इसने जी जारी की है. उस लिस्ट में यानी कि ये हाईएस्ट जो पेइंग प्लेयर्स नहीं है, सिर्फ टेनिस प्लेयर्स है, ये उनकी लिस्ट है. जैसे वो करते हैं ना हाईएस्ट प्लेयर्स मेन, सॉरी हाईएस्ट रिचेस्ट मेन, रिचेस्ट वुमेन, रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर, तो इसी तरह ये रिचेस्ट टेनिस प्लेयर्स जो हैं वो. तो इसके अंदर जी रॉजर फेडरर 41 इयर्स इनकी एज है, हाईएस्ट पेड ये हैं 17 स्ट्रेट ईयर, यानी कि फॉर द 17th स्ट्रेट ईयर ही इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड टेनिस प्लेयर. इन्होंने $90 मिलियन यूएस कमाए हैं आफ्टर अपने सारे वो टैक्सेस वगैरह देने के बाद सिर्फ पिछले 12 महीने में. ये जो हम आपको फिगर्स दे रहे हैं ये सिर्फ पिछले 12 महीने की है, ये इनकी लाइफ टाइम अर्निंग नहीं है. सिर्फ एक साल में सिर्फ $90 मिलियन जी रॉजर फेडरर ने कमाए हैं. इमेजिन हु इज नंबर टू. सुन जा रहे हो ना, बस सो जाओ तुझे, मैं तो मरन जा रही हूं. मैं तो खुदकुशी करने जा रही हूं माजिद भाई. सेकंड नंबर पे कौन है माजिद भाई, कैन यू इमेजिन, 24 इयर्स ओल्ड नियोमी ओसाका, लास्ट ईयर शी वन $56.2 मिलियन वन नहीं मेड शी मेड. नंबर थ्री पे है जी सेरेना विलियम्स, शी मेड $35.1 मिलियन. नंबर फोर पे हैं राफेल नडाल, $31.4 मिलियन. पांचवें नंबर पे हैं जोकोविच 27.1 मिलियन यूएस डॉलर्स, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मैचेस खेले भी नहीं है। नंबर सिक्स पे है एमा रोडोकानू, 16 इयर्स इनकी एज है, 21.1 मिलियन यूएस डॉलर्स इन्होंने कमाए हैं। सेवंथ नंबर पे हैं जी 26 ईयर ओल्ड डेनिल मेडवेडेव, और इन्होंने बनाए हैं 19.3 मिलियन, अगेन क्योंकि ये रशियन है, बहुत सारे गेम इनको खेलने नहीं दिए गए तो भी। आठवें नंबर पे है जी काई निशिकोरी, 13.2 मिलियन यूएस डॉलर्स इन्होंने बनाया। नाइन्थ नंबर पे वीनस विलियम्स, 12 मिलियन यूएस डॉलर्स। नंबर 10 पे कार्लोस अल्काराज, 19 ईयर्स, स्पेन से हैं, 10.9 मिलियन यूएस डॉलर्स ओनली इन वन ईयर। सानू कितना चाहिए था? 1 मिलियन डॉलर। साडू देखो जी, ये इतने देखो जरा, 90 मिलियन एक साल में, सानू 1 मिलियन भी नहीं मिल रहा, लानत ऐसी जिंदगी पे। चलो मर जाए, चलो चलिए
मरी जाए
जो इतने गरीब लोग उनको मरी जाना चाहिए।
मरी जाएंगे।
यस, तो ये थी आज की खबरें मजद भाई, दिल दुखाने हाय हुए।
ये थी आज की खबरें।
हाँ जी, हाँ जी।
और बके
मेंढे को मिलेंगे अब फिर से?
अच्छा, मंडे को आएंगे आप?
हाँ हाँ।
उससे पहले आने की जरूरत कोई नहीं है कुछ?
नहीं मजद भाई, हम क्यों, हम मेचे ना देखें? संडे को हम मेचे देखेंगे बैठ के।
अच्छा संडे को? हाँ। भाई मुझे तो बड़ा अफसोस है।
किस चीज का मजद भाई? आपकी जो है ओ, आपके मजद भाई वो जो है आपके नीले जय बड़े जीत रहे हैं आजकल, उसकी आप खबरें ही नहीं सुना रहे हैं?
नहीं नहीं,
इतने आपके नीले जय जीत रहे हैं,
7 out of 8 games। अभी 3 games उन्होंने स्ट्रेट जीते हैं बॉस्टन से, उससे पहले 3 out of 4 games अगेंस्ट न्यूयॉर्क।
किसने लिफाफा दिया इनको?
ओ लिफाफा, नाम नहीं बता सकता ना।
अच्छा अच्छा अच्छा,
नाम नहीं बता सकता।
ओके ओके ओके,
मगर 7 out of 8 games। अब नेक्स्ट 3 games जो है वो टोरंटो में है।
अच्छा।
और टोरंटो में कैलिफोर्निया एंजल्स की टीम जो है वो आ गई है, और आज 7 बजे उनका प्रोग्राम मामला शुरू होगा। तो
हाँ।
इसके बाद न्यूयॉर्क मैट्स है, न्यूयॉर्क मैट्स, इसके बाद है शिकागो कब्स।
अच्छा।
उनके साथ 3 games है, तो ये 2 teams जो है ना, ये अच्छी टीमों को बहुत बुरी तरह मारते हैं हम।
अच्छा, और जो गंदी टीमें होती हैं उनसे हार जाते हैं?
गंदी टीमें, वाकई में गंदी टीमें जो होती हैं उनसे हार जाते हैं।
अच्छा अच्छा, वो प्यार में ना, उनको उनको चीयर अप करने के लिए। कोई गल नहीं, असि थोड़े को भी मरे हैं,
लो कर लो गल। वो जो है वो अब ये अभी अगले 6 games जो है उनके।
हाँ।
वो गंदी टीमों से हैं।
अच्छा अच्छा, वो बस फिर वो तीनों हारने हैं उन्होंने,
वो 6 games है नहीं,
वो 6 के 6 हारेंगे माशाल्लाह इंशाल्लाह।
ओ रंडे यार प्लीज, गलत आकर।
अच्छा जी,
हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा डोंट वरी अबाउट इट, डोंट लिसन टू हर, डोंट लिसन टू हर, गो एंड प्ले एंड यू गोना विन एनीवे। और क्या है आपके पास, और कुछ है?
नहीं नहीं, वो पाकिस्तान में भी लोग कह रहे हैं ना, जो कुछ 75 years में चूरन था आपने बेच लिया है, और अब और बेचने के लिए कुछ नहीं है आपके पास। तो हमारे पास भी, हमने भी ये सारा चूरन बेच दिया बस, अब और कुछ और नहीं है।
आपकी न्यूज़ें कम हो गई हैं, मैं देख रहा हूँ।
अच्छा, दिन ब दिन कम होती जा रही है?
दिन ब दिन न्यूज़ें आपकी कम होती जा रही
है। अच्छा अच्छा, क्योंकि आजकल मजद भाई वो असल में हम भी गरीब हो गए ना, मेरी सब्सक्रिप्शन न्यूयॉर्क टाइम और वाशिंगटन पोस्ट की खत्म हो गई है, तो मैं मैंने उनको रिन्यू नहीं किया, एज अ रिजल्ट में उनकी खबर।
इशारा 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 इशारा,
हम गरीब है और देखो जरा मैनेजमेंट हमारे पैसे नहीं बढ़ा रही।
इशारा इशारा, मैं तो सोच रहा हूँ कब 770 एंड ई आवाज की टीम, जब मैं आऊंगा अपनी गाड़ी पार्क कर रहा हूँ सामने।
हाँ।
तो वो सारे प्ले कार्ड लेके खड़े होंगे, मुझे अंदर नहीं आने देंगे। हम इस ट्रैक पे हैं।
हाँ बिल्कुल। मैनेजमेंट को हमारा कोई ख्याल ही नहीं है। ये कब तक हम जो ये खोता गाड़ी ऐसे ही चलाएंगे?
मगर हम देखते हैं ना कि आप नए नए कपड़े रोजाना पहन के आ रही हैं।
हाँ, बस अब जो है अब आज से कल से फटे पुराने कपड़े पहनने शुरू कर देने हैं।
ज्वेलरी जो है ना,
हाँ,
वो शॉप अटैक क्या है वो।
ये सारी जगह मैं नागरा फॉल्स में सारा कुछ फेंकने लगी हूँ, कपड़े भी ज्वेलरी सारा कुछ।
वो अभी आपने थोड़ी पहले बताया था ना।
हाँ।
वो जो ज्वेलरी आपके शार्प अटैक। हाँ। क्या थी केड़ी सी हो
कैडी पटीक फिलिप
पटीक
ये तो आप पे केस होना पड़ेगा। यू डोंट नो पटीक फिलिप, व्हाट इज दिस।
पटिक, हम तो कहेंगे पटिक क्या पढ़ाई भाई।
बस ये जो पीले स्कूलों में पढ़ते हैं ना बच्चे उनको नहीं पटिक फिल्म का पता होता कि 5 लाख की भी कोई कड़ी होती है ते 5 लाख की अलमारी होती है उसको रखने वास्ते। हाँ आपको पता है ये जो बड़े बड़ी जो ये
सिर्फ गला करो
उन वॉचों को रखने के लिए भी कैबेड्स होती हैं।
आपको पता है यहाँ पर डाउन टाउन टोरंटो में यू आर राइट नाउ
अच्छा
अभी भी है
डाउन टाउन टोरंटो
अभी बताओ मैं अभी भी है डाउन टाउन टोरंटो में ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं और यहाँ पर तो इलीगल है ना स्मोकिंग करना मगर उन रेस्टोरेंट्स में बेसमेंट में जो ऐसे बेसमेंट मीन इट्स नॉट लाइक अ $1200 किराए का बेसमेंट नो वो वहां पर जो है उस वाले जगहों पे सोफे डले हुए हैं और पड़ा वो है और वहां पर सिगार पिया जाता है
क्यूबन सिगार
सिगार पिया जाता है। अच्छा उनके पास उसके बाद फिर सर्टन टेम्परेचर्स पे उनके लॉकर्स हैं जी लॉकर्स हैं जो कोई नहीं जा सकता आपका लॉकर है आप वहां पर आपने जाके वहां पर अपने सिगार्स रख दिए
यस दैट्स राइट
ठीक है ना और उनको एक सर्टन टेम्परेचर पर रखा जाता
जी,
है
जी 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 जनाब यस
ठीक हो गया।
इसी तरह कैडियां है ना ये जो कैडियां है महंगी किस्म की 10-10 million की इनके वो कहते हैं जी एलिमेंट्स खराब
आप
हो
तो घड़ियों की बात कर रही है ना मैं तो सिगार की बात कर रहा हूँ आप
क्या बात है
अच्छा, और वो भी वो नहीं है कि $1 का सिगार दे दे आधा सिगार दे दे मुझे
$1 का तो होता ही नहीं है आपको मैंने सुनाया नहीं था जिना साहब ने अपना सिगार वापस ले लिया था उनसे सिगरेट बल्कि पापा उन्होंने कहा ये बड़ा महंगा सिगरेट है ये खकसदार तहरीक के वो जो थे मजदी साहब उनको कहा ये वापस करो आप पी नहीं सकते ये मेरा सिगरेट मेरा सिरगुट वापस
फकीर ने कोरबा खा लिया इतना तो गश खा के गिर गया
वही बात है वही चक्कर है
वही चक्कर है वही चक्कर है यहाँ पर ये सिगार भी जो ना वो बड़ी आला नस्ल के सिगार होते हैं वो अंदर रखते हैं उनकी कटिंग का टिप कटिंग होती है ना टिप कटिंग का अलग मामला है उसको और वो जब आप जाके बैठे वहां पर तो आपके लिए जो बैरे जो वहां पर वो काम कर रहे हैं वो
हाँ।
तो वो जो लेके आते हैं ना तो वो भी ऐसे नहीं उन्होंने हाथों में ग्लव्स पहने
ग्लव्स पहने होते हैं
है ना
जी,
और ग्लव्स पहने हुए हैं और वो एक ट्रे में एक वुडन ट्रे होती है उस वुडन ट्रे में लेके आते हैं आपका लाके आपको पेश करते हैं जी ये लीजिए
चलो माजिद भाई फिर तुसी और मैं असी भी कोई माफिया दे कोई डील करने हैं फिर जाके उत्थे बैठांगे किसी घर च करके क्योंकि वो लेफ्ट है $15 बराबर पे तो आप नहीं एंजॉय कर सकते जी चलो जी फिर कोई माफिया दी डील करिए
है ना
करनी पड़ेगी हाँ जी हाँ जी हाँ जी